वैष्णव लोग हृदय में भर गए। अब जरूर ना है। अब इन लोगों ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों ने सारे प्रश्न धर दिया, आप लोग इसके जवाब दीजिए, इसके बाद हम लोग उत्तर देंगे, आप लोग जो करेंगे। इन्होंने क्या किया, सबको प्रणाम करके, गुरुवर्गो को सबको प्रणाम करके सभा में उपस्थित हुए। बस सभा सुलभ सहज नम्र विचार से चार दिवस सत्य युग से लेकर के ब्राह्मणों की जो महिमा है, समस्त ब्राह्मणों की महिमा कीर्तन करने लगे। वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या है, शास्त्र में क्या है, रामचंद्र जी ने कैसे सम्मान किया, स्वयं कृष्ण ने कैसे सम्मान किया ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों ने कैसे आदर किया है, और ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मणों की महिमा वो लोग सुनकर के आश्चर्य हुए। जो वेद वेदांतों के श्लोक हम नहीं जानते हैं, हटिए ब्राह्मणों की इतनी प्रशंसा बड़ाई कर रहे हैं, ये दिख तो हमारा ऐसे ही इसने कर दी, ऐसा तो हमने कभी हम लोग भी नहीं जानते हैं। ब्राह्मण जगत गुरु, ब्राह्मण भूषु देवता स्वरूप, और भगवान जिनकी आराधना करते हैं और पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण ने किया, और ये ब्राह्मण जगत के धारा पोषक सब कुछ है। यदि ब्राह्मण ही नहीं है, भगवत शक्ति नहीं है, और जगत के अंदर तेज हीन हो जाएगा और शक्तिहीन हो जाएगा, सब लोग शूद्र बन जाएंगे। इनकी रक्षा करने वाला एकमात्र चारों वर्णों की ब्राह्मण ही गुरु है, और ये ब्राह्मण ही चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का उनका केवल अधिकार है। विभिन्न प्रकार से समस्त विचारों को ब्राह्मणों की घर दिया। अब यदि विचार करने लगे, ये गुण जिसके अंदर में लिखा जाता है, जन्म ना जाए शूद्र संस्कार आदि जो उच्चते वेद पटे भगवत विप्र ब्रह्म जाना सब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में विचरण करते हैं और जो इस ब्रह्म के लिए ये भूमि बनाया शोक करते हैं, सोचना शूद्र जो वह ऐसा अखरण गार्गी विदित अस्मात दुकान सदैव ब्राह्मण, और जो इसको जानते नहीं तत्व को सुकृतन, जो तत्व को जानते हैं तब वो कुछ बोलने लगे, कौन ब्राह्मण है कौन कृपण है, एक एक करके अब काटने लगे। अब ब्राह्मण लोग क्या किया, उठ करके एक करके चलने लगे, करते 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 आखिरी तक दो चार ही निगे नहीं रह गए, केवल शर्म के मारे जब विचार दिखाने लग गए। राक्षस आजाद उन्होंने बताया, राक्षस परिमा से जाते ब्रह्मजनी छू, इन कलयुग में जितना ब्राह्मण आए हैं सब राक्षस हैं, और मर मर करके ब्राह्मण कुल में आए हैं। क्यों, शास्त्र का पुराण है, प्रमाण है, रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, जो मरे हैं कहाँ मरे हैं, राम रावण युद्ध में। तो उन लोगों ने बोला, प्रभु हम तो राक्षस मर गए, हमारा भी तो युद्ध है कि बैठ दीजिए, तो जब कलयुग में तुम लोग ब्राह्मण होकर क्या होगे, क्योंकि कैसे दूसरे को पिला देने के लिए, वहां पिला देने से क्या होगा, और पिला देने से साधु लोग पक्के बने, बंद कार्यमंड में राक्षसों को बहुत सताया और साधु अच्छे साधु बने, ढोंगी नहीं रहे, ऐसे ब्राह्मण लोग कलयुग में आकर के साधुओं को अच्छे सताएंगे, और जो पक्के साधु होगा वही टिके रहेंगे, वही भगवत प्रचार प्रसार करेंगे, हम नहीं तो इन्हें इन्हें बर्बादी हो बर्बाद चले जाएंगे। ये भगवत सेवक है इस तरह से। तो अब जब इस श्लोक को बोलने लग गए, क्यों राक्षसों की जैसी वृत्ति, ब्राह्मण उस समय बोले की बात आया, बलि चढ़ाना वहां प्रश्न था, ब्राह्मण लोग युद्ध करेंगे, ब्राह्मण लोग बलि उपहार देंगे, वैष्णव लोग विरोध करते हैं, तब उन्होंने बतलाया बलि क्या किसे कहते हैं, बलि मतलब उत्सर्ग करना, आत्मबलि बलिदान देना। उस समय पशु को बलि दी जाती थी, कैसे, एक पशु के शरीर को तामसिक शरीर को छुड़ा करके उनको भगवत सेवा अधिकार उनको दे देते थे, कि आज इस देवता के लिए इस आत्मा को समर्पण कर रहा हूँ। जैसे गुरुपाद पद्म के चरणों में कोई भक्त एक जीव को उठा करके ला करके समर्पण कर देता है, ये आपके सेवा में हाजिर है, आप इनको स्वीकार कीजिए, उनको बलि दे दी, अपने बलि दे दी, गुरुदेव उनको सेवा में स्वीकार कर ली, भगवान कृष्ण को पूछा। ऐसे ही उस समय ऋषि महर्षि लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक सेवक उपहार देते। जीवात्मा का शरीर से छूट गया ये जो ऊपर का, और वो भगवत सेवा में प्रवेश कर लिया। प्रभुपाद ये विचार दिखाने लगे कि बोलते की बात आई तब उन्होंने वहां पर दिखाया। उस समय ब्राह्मणों में ताकत था, शक्ति थी देवताओं को प्रसन्न करने, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक एक बलिदान करते थे। वो बलिदान करने से जीवात्मा शरीर से छूटा, देखा काट दिया यज्ञ में, वो आत्मा जाकर के सेवा में लग जाते, देवता प्रसन्न हो जाते, वो मेरे को सेवक तो दिया, भगवान प्रसन्न रहते, एक आत्मा तो हमारे पास पहुंचा। किंतु आज क्या ऐसा है, आज हम लोग राक्षस विचार, राक्षस की असुरी विचार लिया, क्या काट करके उसे शरीर को खा लिया, और भगवान के भोग के लिए सामग्री आता है, भगवान को समर्पण करने की इतना अवसर नहीं, उसके पहले ही अपने कराधिकरण करना, तो ये क्या है, आसुरी स्वभाव है। भगवान को समर्पण कर दिया, करने के बाद में भगवान प्रसाद जो कुछ रहा उसी से जीविका निर्वाह करने से दुख नहीं आएगा। उन्होंने एक एक करके जितना विचार था सब खंडन कर दी। उस समय लाखों लाखों लोग जो सुनने वाले श्रोता है, सब लोग क्या किया, जय जयकार देने लगे। ब्राह्मण लोग तो कोई रहा नहीं, और कोई प्रतिपक्ष जवाब देने वाला नहीं रहा। विभिन्न प्रकार वैष्णव विजय ग्रंथ आप लोग अध्ययन करेंगे तो पता पड़ेगा, सरस्वती जयश्री में भी था, प्रकाशित हुए थे, इसके बाद में वैष्णव विजय एक ग्रंथ ही अलग हो गया। उस समय सब लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा गमला लेकर के प्रभुपाद के चरणों में समस्त गंगा जल दूध घी मधु चीनी सब डाल दिया और धो दिया, और वही चरणों में क्या समस्त विश्ववासी ने ग्रहण किया। वैष्णव विजय के बाद भक्तिमन ठाकुर जब लौट के आए, भक्तिमन ठाकुर जी छाती में लगा, क्या बोलते हैं, अब तुम्हारे ऊपर मेरे भरोसा है, मैं चार आदेश देता हूँ, अधिक नहीं, क्या भक्ति ग्रंथ पुनः प्रचार और दैव वर्णाश्रम। केवल ये वर्णाश्रम नहीं, दैव ये आश्रम और वर्णों को छोड़ना नहीं, किसी को दिव्य अपराधित सत्व के साथ युक्त कर देना, संसार में रहे किंतु दैव हो, अर्थात जो कुछ करेंगे प्रभु के निमित्त, प्रभु के लिए सेवा, प्रभु के लिए संतान, प्रभु के लिए खेत, प्रभु के लिए सबके साथ युक्त करना है, और भक्ति ग्रंथ प्रकाशन करना है, और क्या करना है, महाप्रभु जी की जो संन्यास धर्म है इसको पुनः प्रचार करो, प्रचार करो, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, संन्यास को पुनः प्रचार करना है, और क्या करना है, ये नवति धाम का सेवा प्रकाश करना है। ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरे को मैं साक्षात जा रहा था ब्रज में, मेरे को सारा कृष्ण सिद्धि ने आदेश दिया और सब वैष्णवों ने मेरे को आग्रह किया ये करना है, तो कैसे होगा, मायापुर, यही मायापुर है, कैसे प्रकाशित करेंगे। पहले भक्तिमन ठाकुर जी नक्शा में मैप पे देखा, किंतु अब कहने से मानेगा नहीं, किसी जब गोद्रू में सानंद सुखद कुंज में भजन करते थे, रात के 12 बजे उठ करके श्लोकों को अनुवाद करते, लिखते, हरिनाम करते और ग्रंथ आदि प्रकाशन करते। उस समय एक दिन रात में देखा, बहुत दूर से दिव्य संकीर्तन और ज्योति संपन्न विराट भाव विपुल देखकर जी सोचा, इतना मुंडित मस्तक मुंडित शिखा सूत्र उपवित, ये कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सचमुच में ऐसा है, किंतु इतना उज्जवल कीर्तन, इतना सुंदर भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर दूसरे दिन जाकर के समस्त जगह ढूंढते आए, कहीं देखा नहीं कोई वैष्णव, कहीं देखा नहीं कुछ, तो बोले क्या पूर्वाभास हो रहा है, उस समय प्रभुपाद भक्तिमन ठाकुर जी ने बताया, एक दिन ऐसा आएगा, ये जो बुरा लोग हैं, ये बुरा लोग और भारतीय लोग मिलकर गले में गले मिलेंगे और प्रेम से हरिबोल करके कीर्तन करेंगे। क्यों, बुरे लोग बड़े बुरे थे, सुंदर थे, और जब मुंडित मस्तक मस्तक मुंडित होगा, इतना सुंदर दिव्य चेहरा होगा उनका, ये लोग जब हरिनाम करते तो कैसा सुंदर होता। फिर चुप रहे, फिर हरिनाम कर रहे हैं ऊपर में, फिर एक दिन बाद दो दिन बाद फिर देखा, उस दिन उन्होंने लक्ष्य किया, एक ताड़ का पेड़ है,
एक दूसरे दिन गए जाकर क्या देखा, उसके नीचे भूमि तो बहुत है जिसमें, किंतु उसमें खेती नहीं होता। मुसलमान से पूछा, भाई खेती क्यों नहीं करते? तो इससे नहीं होता, यहाँ जो कुछ होता होता ही नहीं, तुलसी उगाता है, तुलसी उगा के फेंक देता हूँ फिर दोबारा हो जाता है। उन्होंने वहां पर चिंता किया, यही स्थान महाप्रभु का आविर्भाव स्थान होगा, जहाँ शिवासंगम में नित्य कीर्तन होता था, यही आसपास में सब होगा, वही मेरे को महाप्रभु जी ने कृपा करके दर्शन दिया। प्रभुपाद जी को एक कुटिया बना करके वहां पर रख दिया। प्रभुपाद वहां पर एक दिन में क्या 3 लाख प्रणाम करना, और एक वस्त्र में प्रभुपाद अधिक समय नीला वस्त्र पर ध्यान करते थे, और एक बार हा करना, किसी से कोई लेना न देना। उस समय हमारे परमाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, रामदास बाबा जी महाराज, राधामन चरणदास बाबा जी महाराज, गोरखीदास बाबा जी महाराज, सब लोग गोपाल ठाकुर जी के आदेश निर्देश अनुजाई इस स्थान पर जाने लगे। जगन्नाथ दास महाराज को उनके सेवक बिहारी दास टोकरी में ढोकर के मथुरा से पैदल पैदल वहां तक गए, लेकिन किंतु वहां जाते ही क्या किया, मायापुर में वहां से उछल करके टोकरी से कूद गिर करके कूद करके नृत्य करने लगे। यही तो महापुरुष जी का मेरा घर है, यही है, नृत्य करने लगे। और एक माह महीना तक पूरा संकीर्तन बंबई नहीं हुआ, सारा दिन रात 24 घंटा चल रहा है, और कहाँ से प्रसाद आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, गोपाल ठाकुर जी आश्चर्यचकित हुए। वहां पर बहुत विपुल रूप से चलने लगा। इतने में हाँ वो जो भूमि था खनन कार्य शुरू हो गया, करते 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 वहां पर अध्यक्ष नारायण मूर्ति, शालिग्राम और सिंहासन, शंख अर्चन के समस्त जीने चीज, और महापुरुष के सुभाषम के समस्त सिंहासन मिलने लगे। सब लोग एक सत्य का यही मायापुर है, यही महापुरुष के घर है, जगन्नाथ मिश्र भवन है। अब क्या होता है वहां पर, बाबा जी लोग भी बहुत खुश है, सब लोग रहने लगे। इतने में एक भगवान दास बाबा जी नामक एक बाबा जी आए, आकर भक्ति ठाकुर जी को अनुरोध किया, मेरे को मायापुर में थोड़ा स्थान दे दीजिए, मैं महाप्रभु के स्थान पर थोड़ा मैं रहूं। तो रहने लगे कुछ दिन, और ललिता प्रसाद उनके भाई भक्ति ठाकुर जी के सुपुत्र वो भी रहने लगे। वो सुबह उठ करके हारमोनिया में चले के तो क्या गाने लग गए, राई जागो है, एक उन बाबा जी के सहयोग कीर्तन है, ऐसे कीर्तन करने लग गए। और वो बाबा जी का भाई सब इनके दल में हो गए, वो भी जाने लग गए। अच्छा तुम राय को जागे या तुम इतना बड़ा हिम्मत वाला है, यहाँ महामंत्र करो, पंच तत्व करो। और भक्ति ठाकुर जी ने, नर्तन ठाकुर जी ने जो कुछ आदेश दिया, विवाह भरी शिशु आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवो, शिव को जगाओ, भगवान को जगाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, भगवान को अज्ञान में नहीं है, भगवान को जगाने वाला दूसरा आदमी नहीं है। वहां पर लगा, और बाबा जी के साथ में माता जी भी है, तो बोले यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, बाबा जी माता जी मायापुर में महापुर जी के जीवांगन में नहीं रहेगा। प्रभुपाद बड़े कट्टर, उस समय बिगड़ गए। अच्छा मैं क्या कहूँ, मैं भी मायापुर बना के रखूंगा, बस बिगड़ कर जाकर जितना एक तो जाति को लोग पहले से ब्राह्मण लोग बिगड़े थे, और वैष्णव विजय के बाद पराजय, और नवद्वीप के ब्राह्मणों ने देखा हमारा आय तो गया, रोजी रोटी तो गई, क्यों उन लोगों ने इस बार में बना रखा था क्या शिवा सम्मान समाजवाड़ी सोना गौरांग विष्णु प्रिया जी के सेवित विग्रह ये सब कहते, अब तो इन्हें रोजी रोटी मारी जाएगी। इन लोगों ने रामचंद्रपुर में एक जगह था गणेश मास चटिंग मार्ग, हम लोगों के समाज में मैंने देखा कुछ नहीं था चटिंग मार्ग रामचंद्रपुर, हम लोग वहां जाना ना था, तो वहां पर एक खोल दिया नया विष्णुप्रिया पल्ली पता चिन्ह नया था, बस बाबा जी लोगों ने वहां नया शुरू कर दी। किंतु गंगा कुछ देर में गंगा जी आई, गंगा जी ने तोड़ फोड़ कर सब बराबर कर दी। फिर इन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस देव को ले आए बाबा जी ने, और भक्त ठाकुर जी बिल्कुल समसामयिक उनको ले आए, आप जो कुछ कहेंगे वही माना जाएगा, आप परम साधक है, साधक है, आप बताइए कहाँ है। वो आए गंगा जी में नौका में चढ़े, और गंगा जी में जाकर बीच गंगा में बतलाया यह मायापुर है। वो एक अद्भुत और उद्भुत उन्होंने बोला वो भी मायापुर नहीं, ये भी मायापुर नहीं, बीच में मायापुर है, लोग ना गर्भ में ले। फिर वो निकल गए। ऐसे बहुत चीज तय किया अब तक, किंतु कुछ काम में नहीं आया, काम आयक नहीं हुआ। ये झगड़ा आज की नहीं, वो शुरुआत से। क्यों? उन लोगों ने क्या कहा, शुक्राचार्य के दल कलिंग के सर गंगा के पूर्व पार पर माथा मुंड मुड़ा के सन्यास का रूप धारण करके हमारे ये रूप रघुनाथ की विचारधारा को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग कोई मत जाना होगा, और नेम प्लेट और बोल इधर से बाजी और सारा प्रचार करने लगे। प्रभुपाद जी ने तो उस समय विषय से हुआ दैनिक नदिया प्रकाश, उसका कैसा खंडन हुआ, क्योंकि हम लोग अपने पिता के दादा से बाबा से सब बातें सुना था थोड़ा बहुत। प्रभुपाद जब सबसे पहले नवद्वीप में नौ द्वीपों में पहले गए थे, 10-12 ब्रह्मचारी लेके, किस प्रकार से तुमूल आंदोलन हुआ नवद्वीप में, कैसे कैसे उन्होंने महापुरुष के प्रकाश किया स्थान। ये गौर गदाधर जी का मंदिर है, स्मार्ट ब्राह्मणों के हाथ में था, और लोग मछली खाते और पूजा भी करते, और क्या करते, मंदिर के अंदर में जाकर गौर गदाधर की आज की विग्रह में विजय बाजी नाथ का सभी विग्रह क्या करते थे लोग, दरवाजा खुला थोड़ा आरती कर दी और पात्र से दो चार रख दिया चले आए। और लोग बात कोई नई चीज बनता गांव में, खेत में, घर में, शादी विवाह होता, समाज जो कुछ होता वहां जाकर के चढ़ाए जाते, वो ब्राह्मणों का जिज्ञासा था, किंतु सेवा पूजा कुछ नहीं होता। तो पास जब गए ग्राम लोगों के पुरखों ने क्या किया, बोला ऐसा दुख व्यक्ति इतना सुंदर भाषण, इतना सुंदर सबको मीटिंग और कीर्तन किया, सबको निमंत्रण दिया, सब लोगों ने सेवा भार को उठा करके दे दी, आपको आप ही दुख पुरुष। तो अब तो पास वहां जब हरिनाम कर रहे थे, कष्ट करते रहते रहते कुछ दिनों में महाप्रभु जी की कृपा दे, और परिकर समय सब लोग प्रभुपाद जी को आखिर बोलने लगे, इतना इतना व्यतीत विरोध नहीं होने से कैसे काम चलेगा, जिस कार्य के लिए आया उसको तो करना है। आजकल कुछ कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने पुरस्करण किया, हरिनाम किया, इसके बाद में सिद्ध हुए तब प्रचार किया, हम भी पुरस्करण करूंगा, हमें भी करना है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। किंतु वो तो हर्षद श्रीमती जी के गण है, महाप्रभु जी परिकर है, वो एक मिनट उनके विरह में चयन नहीं कर सकते, वो सब समय उनके नाम चिंता करते, कीर्तन करते, हम लोग कष्ट कल्पना करने जाकर के गुरुवर्गों को उपेक्षा करके स्वतंत्र रूप में करने जाएंगे तो हमारे लिए संभव नहीं, धैर्य भी नहीं, अध्यवसाय भी नहीं, और एक करते शिव गर्द करते बंदर हो जाएगा। इसलिए वो तो 3 लाख क्या 24 घंटा ही हरिनाम करते, भगवत लीला में समय आवश्यक, किंतु उस समय सोच रहे थे मैं इन कलियुग जीवों के भीतर में प्रचार कैसे करूं, क्या करूं, कोई उपाय का अवलंबन करने से हो सकता है, आप संगी मुझे शिक्षा प्रेरणा दीजिए। तो प्रभु की कृपा से महाप्रभु के आदेश थे, बस जब बोले अब कोई चिंता नहीं, सब आएगा, सब तैयार है, अब प्रचार शुरू होना चाहिए। अब उस समय एक एक करके परमानंद प्रभु, नरेश्वर विग्रह प्रभु, मेरे परम गुरु महाराज, और विशेष करके कलकत्ता कुंजीबेरे की दर्शन प्रभु, और धीरे धीरे करके सब वैष्णव लोग मिलित होने लगे। आप लोग बच्चे विचार था काल वर्णन करेंगे, क्या आप लोग बच्चे तो उनका लीला, इसके बाद उनका विचार कैसा है, किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, कौन क्या चीज जीवों के लिए दिया, उसके भी कुछ आलोचना होगा। प्रभुपाद हम किए हैं कि कृपा पूर्वक उनके आविर्भाव स्थिति को हमारे सामने आविर्भूत कराया, जिससे कि हम लोग उनके गुण कीर्तन को श्रवण करके और महिमा का कीर्तन करके अपने आप को कुछ साधन राज्य में अग्रसर होने का सुकृति बना सके, एक सुयोग दिए हैं। प्रतिदिन सुयोग होने पर भी आज के विशेष महिमा भी है, इसमें चित्तयुक्त होने के साथ साथ में प्रभु क्या करते हैं, प्रभु चित्त ध्रुवीभूत होता है। मार जी से उदाहरण दे रहे थे कि एक बच्चा एक दिन खाया नहीं, माता पिता के सामने उन लोगों ने बहुत चेष्टा किया मानाने की। बाद में ये पूछा तेरे को क्या चाहिए, किस लिए दुखी है? जब तक तो उसको नहीं मनाया तब तक उनको शांति नहीं। और एक तरफ से दिखाया ये भी एक हट है, और एक तरफ से दिखाया महाराज जी ने कि एक व्यक्ति अपने गुरुवर्गों के आगमन तिथि, आविर्भाव तिथि या भगवान के आविर्भाव तिथि पालन करने जा रहे हैं। जैसे ब्रजदेवियां क्या करती थी, प्रतिदिन कृष्ण गोचारण में जाते जाते समय जैसे उनके लिए अभिनंदन करते और आते समय उनके स्वागत समारोह के लिए दिन भर तैयारी किया। शाम को खड़ी है अटारे के ऊपर, छत के ऊपर, किनारे सड़क के, गली में, सब जगह में, क्योंकि श्याम सुंदर आ रहे हैं। श्याम सुंदर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को ऐसे जीत रही है और प्रत्येक व्यक्तियों ने ऐसे जीता, ऐसे सेवा परिपाटी उन लोगों के अंदर में और भावनाएं हैं, प्रभु मुक्त हो गए। आखिरी प्रभु को उन लोगों के रिकॉर्ड बांध बंधना पड़ा। बता गए हैं महाराज जी कि यदि गुरुवर्गों को अपने हृदय में लाना है या गुरुवर्गों के सानिध्य में जाना है, आप उन लोगों को चित्त में समेट करना है तो क्या करना है, विशेष विशेष जो उनके मनोवित सेवा है उसको करना पड़ेगा। किंतु मनोवित सेवा तो है, किंतु मनोवित सेवा क्या है, भगवान के प्रति विधान, और भगवान के प्रति विधान क्या है, गुरुवर्गों की आदेश पालन करा, आज्ञा उनकी सेवा करना। तो अभी भगवान के इच्छा के अनुकूल उनके प्रियता है तो जो ऐसे गुरु वैष्णव के आविर्भाव तिथि के दिन जो करुणा घन विग्रह मूर्तिमान रूप धारण करके जगत के जीवों के लिए आविर्भूत होते हैं, उस समय यदि जीव इसमें सम्मिलित होते हैं, एक बार भी यदि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा युक्त पिपासा युक्त हो जाए, ये उत्कंठा जागृत कोई करा सके, आप उस प्रभु के विचारधारा में सम्मिलित करा सके, तब समझा जाता है कि प्रभु के उत्सव या प्रभु के आविर्भाव तिथि का पालन हुआ। इसलिए हमारे अंदर में तो उत्कंठा ही नहीं, ये व्यक्ति कौन है, किसने जगत में आए, क्या उनका प्रयोजन है, क्या है, और उनके द्वारा हमारा लाभ क्या होने वाला है, केवल खाना पीना, सजना सजना, लोगों को दान दक्षिणा दे देना, ये बहुत कर्मी लोग भी करते हैं, तो उनमें हमारे में फर्क ही क्या रहेगा, बाहरी आलम्बर से, किंतु नहीं, बाहरी आलम्बर के द्वारा समस्त जीवों को आकर्षण करके, जैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी प्रदर्शनी और विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार के कई कई जगह में जाता थिएटर भी नागपुर में खुलवा दी, कुरुक्षेत्र में विभिन्न जगहों में लोग आकर्षित करके क्या किया, भगवत महाप्रसाद अर्थात भगवत वाणी इतना सुंदर सुस्थ रूप से परिवेशन किया, सबका अंदर उत्कंठा जागृत हो गया और आग्रह हो गया, उस व्यक्ति के साथ युक्त हो गए। ऐसे यदि कुछ कार्य किया जाए कि उनके श्रीचरणों के सान्निध्य में जाने की लालसा भी उत्पन्न हो जाए, और हम लोग यदि चेष्टा युक्त हो तब कहीं जाकर के ये आविर्भाव तिथि पालन करना हुआ और हमारे हृदय में उनका शुभ आविर्भाव होगा। शुभ पहले अमंगल जाएगा, समस्त शुभ उदित होगा। कैसे, जैसे उनका आविर्भाव करने की इच्छा हुई, ऐसे महापुरुष की कृपा के लिए इच्छा प्रकट हुआ, तभी यदि अनायास हो जाएगा शुभ और अशुभ दूर जाएगा। ऐसे महापुरुषों के कौन से ऐसे अतिमत्व चरित्र है, कौन सा ऐसा अवदान है, इन अवदान वैशिष्ट्यों के द्वारा हमारे अंदर में उत्कंठा जागृत हो, पिपासा जागृत हो और अनर्थों के प्रति घृणा हो, और ये मनुष्य जन्म के जो अनिश्चितता है इसकी उपलब्धि हो, कब होगा, कैसे होगा, ये भी उनकी कृपा साबित होगी। कुछ नहीं आता है, सरल विजय लेकर के गुरु वैष्णव के सानिध्य में जाकर के वहां पर पहुंच भी गए। बताते गंगा স্পর্শ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ, দর্শনে পবিত্র কর। হাম দর্শন করলে কে বোধ দর্শনে পবিত্র কর, হাম দর্শন করেন ইয়ো মুঝে দর্শন করেন। ডাক্তার মরিজ ডাক্তার কো দেখনে যাতা হ্যায় ইয়া ডাক্তার মরিজ কো দেখতে হ্যায়, ক্যা বিচার হোগা? হ্যাঁ তো বিচার কর দিয়া দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ। হ্যাঁ হাম দর্শন কর লেঙ্গে ক্যা গুণ ক্যা বিদ্যা হ্যায় ক্যা যোগ্যতা হ্যায় কি বৈষ্ণব হ্যায় হাম সমঝ লেঙ্গে। মহাপুরুষ কো তো ভগবান কো ভি জরাসন্ধ শিশুপাল দন্তবক্র কালীয় অগবক পুতনা অর কংস বহুত মে দেখা, এসে সন্ত মহাপুরুষ সর্বত্র বিচরণ করতে হ্যাঁ, কোন কো দর্শন করতে হয়? আঁখ হ্যায় বিচার বিবেক হ্যায় কেসে দর্শন করেগা? কিন্তু নেই, সরলতা আর অপর নাম বৈষ্ণবতা। যাহা সরলতা হ্যায় নিষ্কপটতা হ্যায়। হ্যাঁ আমার ওর মহারাজ কে পেন নাম তা বিশ্ববান ব্রহ্মচারী, ও ঢুঁড়তে 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 উঠতে সারা বিশ্ব আয়ে মুঝে ভগবান চাই। আজকে দিন মে এক অর মহাপুরুষ কে তির্ভব প্রীতি হ্যায় গৌরগোবিন্দ স্বামী। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ও গৌরগোবিন্দ স্বামী ঠিক সময় ভগবান কে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আমার মঠ মে আয়ে থে, তো যে আয়ে তো ইয়ে বাত হ্যায় জটা ওটা বহুত বড়া লম্বা চওড়া। হ্যাঁ অর যোগী তিলক করতা হ্যায় যোগী হ্যায় অর আয়ে মুঝে ভগবান মিলেগা, মথুরা ভগবান হ্যায়। তো সব পুরাণ সন্তো নে কাহা ভগবান তো বৃন্দাবন মে হ্যায়, মথুরা ভগবান নেই রেতি তো কনস রেতে, তো দু চার দিন ইয়া রয়ে করকে বৃন্দাবন গে স্বামীজি কে সাথ মিলে। কিন্তু উনকো উৎকণ্ঠা সরলতা স্বামীজি নে দেখা, দেখার কে ক্যা কিয়া সমঝ গে, বাস দর্শন কর লি হো গয়া না। এসে বৈষ্ণব কে নিকট যা না যা করকে কৃষ্ণ নে বতলাযা, যদি বৈষ্ণব নিকট জানা হ্যায় দর্শন করনা হ্যায়। এক উদাহরণ দিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু নে আমার শ্রীমন মহাপ্রভু, কেসে ভেজ দিয়া গদাধর যাও কাহা এক বৈষ্ণব হ্যায় দর্শন করে আও। তো গে কাহা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে ইহা যা করকে দর্শন কিয়া, কিয়া হরি বিশাল অট্টালিকা ফেনিল সজ্জা অর সুন্দর গদ্দা সুপাশেষ অর কেসা অবস্থা হ্যায়, পান চবায়া সোনে কা বিদ্যা নেই তেল সুগন্ধি তর রা কপড়া মলমল কা ইয়ে সব চিজ দেখ করকে গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভু জি নে ভেজা বৈষ্ণব দর্শন করনে কে লিয়ে। হ্যাঁ মন মে কুছ ভাবনা কিসলিয়ে? উনকা আচরণ হাম লোগো কে লিয়ে দেখ করকে চলে আয়ে। মহাপ্রভু বলে বৈষ্ণব দর্শন কিয়া? আরে বৈষ্ণব দর্শন করনে সে তো দর্শন নাম নো ভবেশ বন্ধ পুংস অপন সব চুর যথা, আরে চিত্ত নির্মল হয়ে যায়গা অর পরমানন্দ যো ব্রজ প্রেম প্রাপ্ত হয়ে যায়গা। কেসে হোগা? আর তোমার মন মলিন কেউ হ্যাঁ, দূর কুছ বাত হো গই তো প্রভু আপনি কাহা ভেজা? বৈষ্ণব ক্যা কেসা লক্ষণ আর কেসা বৈষ্ণব পুছা? প্রভু বলে আচ্ছা কুছ গড়বড় হো গেছে, ইসমে কুছ দাল মে কালাও আ গেয়া, আচ্ছা ঠিক আছে মুকুন্দ, মুকুন্দ প্রভু কো বুলায়া আও না যাও ইনকো বৈষ্ণব দর্শন করা কে লে আও। মুকুন্দ প্রভু যাতে হ্যাঁ দরগাজা মে ঘুসতে, হ্যাঁ শুরু কর দিয়া ভাগবত কি শ্লোক সুরিলা কণ্ঠ সুন্দর অর মহাপ্রভু কে প্রিয় ক্যা কর রেন অবকীয়ম সনকাল কূটম শুরু কর দি। ইতনা কেনে কে সাথ সাথ মে ক্যা হতা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু ও খাট মে শুনতে যেমন তোমার মূর্ছিত হয়ে উনি গুণ কি ইয়াদ আয়া কৃষ্ণ এসে দয়ালু যো কালপু স্তন মে শীত কো লাগা করকে আয়ে কেবল মা কা বেশ বনা করকে রূপ বনা করকে কৃষ্ণ নে উনকো ধাত্রী অতি গতি দি মা কে সমান গতি দি এসে দয়ালু কৃষ্ণ ও গুণ কি ইয়াদ আয়ে। বাস ছটপট ছটপট করতে হুয়ে কৃষ্ণ কে এক রূপ কা বর্ণন অর কিয়া, ও জমিন মে লোটপুট খানে লগে ভুল গে লালা অর আঁখ কে আঁসু সব মিল করে কপড়া কিচ হো গয়া, কাহা বাল ভিতর ভিতর হো গে ভুল গে অস্বাভাবিক বিচার দেখনে লগ গে। মুকুন্দ প্রভু বড়ে মুর্খে সে উনকো স্বস্থ করায়ে দণ্ড প্রণাম কিয়া চলে আয়ে। তব মহাপ্রভু পুছতে হ্যায় गदाधर वैष्णव दर्शन हुआ, बोले प्रभु मेरा अपराध हो गया, मैं नहीं समझ पाया, तो जाओ इस अपराध के मोचन के लिए उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो दर्शन है पवित्र करो, दो प्रकार का विचार है यहाँ, एक तो कोई दर्शन कराने वाला हो, गुरु वैष्णव के सानिध्य में पहुंचाने वाला हो, उनके तत्वों को विचारों को समझा करके और हमारे अंदर में उत्कंठा पिपासा जागृत करा करके और तो दूर करके पहुंचाए तो हम कुछ समझ पाएंगे, और नहीं तो सरल निष्कपटता को देख करके गुरु वैष्णव यदि हमें देख लिया, डॉक्टर ने मरीज को देख लिया और मरीज की बीमारी पकड़ लिया और दवाई दे दी ठीक हो जाएगा, और मरीज कहेगा हमारी ये बीमारी है दवाई दो, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा आंखों से हम देखने जाएंगे तो नहीं होगा। हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं यदि तुम्हारे वैष्णव दर्शन करना है तो इस कान को दे दो, कान का आंख है किंतु शरीर का आंख नहीं है। एक समय हमारे महाराज जी बता रहे थे पर ये वैष्णव पूजा के दिन में महाराज जी को परम गुरु महाराज भाषण देने के लिए बोले, तो उन्होंने भाषण दिया।